आयत 78 से देखेंगे। वह मिन हम और इन ही में से, किन में से, यहूद में से, उम्मी यूना बास उम्मी है। उम्मी कौन होते हैं? अनपढ़, वो जिनकी तालीम का सोर्स उनकी माँ हो, यानी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। लेकिन यहाँ इससे मुराद वो पढ़ना लिखना नहीं है कि जो अलिफ बा ता ए बी सी नहीं लिख पढ़ सकते, बल्कि यहाँ उम्मी से मत है जो अपनी मजहबी किताब को नहीं पढ़ना लिखना जानते। और यहाँ एक नया मफहूम भी हमारे सामने अनपढ़ या अनलिट का आ रहा है, और वो क्या कि वो अपनी किताब से दूर हो, इल्हामी किताब को न समझ सके न पढ़ सके, वो भी उम्मीद होता है। हमारे यहाँ अमूमन किसको उम्मीद कहा जाता है? जो ए बी सी न लिख सके या 1 2 3 4 5 न कह सके, लेकिन उम्मीद हर बंदा हो सकता, चाहे उसने बंगलर की डिग्री ही न रखी हो, 4 PhD क्यों न किए हों, वो बंदा अल्लाह की नज़र में उम्मीद है कि जिसने अपनी किताब को समझा नहीं। इस तारीफ़ की रोशनी में अगर हम जायज़ा ले देखें, इस वक्त हमारे माशरे की अक्सरियत फिर क्या है? अमूमन मुल्कों के फिगर्स पेश किए जाते हैं कि जी फ़लाँ मुल्क में शराय ख्वांदगी यानी पढ़ा लिखा होने का रेशो इतना कम है, और अमूमन हमारे लोग जो थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं उनको वेस्टर्न कंट्रीज से टैली किया जाता है। और हकीकत है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो अपने तालीम के लिए बहुत ज़ोर भी लगाते हैं और उसका उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि जब उनके यहाँ कम अज़ कम मैट्रिक कंपलसरी है और आप बच्चे को घर नहीं रख सकते, तो उससे एक ये तो फ़ायदा होता है ना कि छोटे मासूम बच्चों से आप फिर वो खिदमत नहीं ले सकते जो हमारे मुल्कों में छोटी सी उम्र में उनको बसों के नीचे ट्रकों के नीचे बिठा के लिटा के उनसे टायर चेंज कराए जा रहे हैं और उनसे खिदमत ली जाती हैं। आपको पता है कि वेस्ट में जुर्म है ये कि अगर आप बच्चे को मैट्रिक से पहले पढ़ने से रोक लें, लेकिन उससे ये फ़ायदा उनको होता है कि फिर उन बच्चों की वो इस हद तक नशवोनुमा कर चुके होते हैं पहले 10 सालों में ही कि फिर वो उनके उस कल्चर के अंदर पूरी तरह अडॉप्ट हो चुके होते हैं। हम मुसलमानों के तालीम के निज़ाम में जो कमी है वो क्या है कि हमने ना तो दुनिया की तालीम लाजिम करार दी, और जो दुनिया की तालीम दी भी तो उसमें भी इतने मुख्तलिफ गिरोह बन गए कि किसी के पढ़े लिखे होने का मेयार क्या है कि वो किस स्कूल से पढ़ा है, वो बीकन हाउस से पढ़ा है या वो कनेट कॉलेज से पढ़ा है या वो किसी लोकल पब्लिक स्कूल से पढ़ा है, गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ा है। तो ये डिवीज़न भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन जहाँ से भी पढ़ा है, माएँ अक्सर इस बात पे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होती हैं, यानी उनको इस बात की बड़ी फिक्र होती है कि मेरा बच्चा आला मेयार के स्कूल में जाए और उसके लिए भारी फीस भी देनी पड़े। तो इस लफ्ज़ के नाते से एक जुमला नोट कर लें कि बेहतरीन तालीम वो है, बेहतरीन स्कूल, आला स्टैंडर्ड का स्कूल जिस पे आप हज़ारों खर्च भी कर सकें तो करें, कोई हर्ज नहीं, वो है कि जो दुनिया की तालीम के साथ साथ आपके बच्चे को किताब का इल्म भी दे, दीन का इल्म भी दे। और ये कोई मुख्तलिफ बांट नहीं थी। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को कैसे रखा कि वो किताब जो कुरान के नाम पे जो अल्लाह ताला ने हम तक भेजी, इसको जब हमने दुनियावी स्कूलों से अलग कर दिया, दो गिरोह बना दिए कि ये दीन की तालीम है और ये दुनिया की तालीम है, और चूंकि लोगों के सामने दुनिया खुली होती है, उसके चांसेस, उसके मौके, आला जॉब, कैरियर, स्टेटस, नतीजा क्या होता है कि हफ्ते के 7 दिनों में से 5 6 दिन तो सिर्फ दुनिया की तालीम पे लग जाते हैं और आखिरत चूंकि नज़र नहीं आती, पीछे डल जाती है, उसके फवाद बज़ाहर हमें दिख नहीं रहे होते, तो बाज़ दफ़ा हफ्ते में 1 या 2 दिन और बाज़ वो भी नहीं, और बाज़ जगह दोनों को साथ रखा भी जाता है तो दोनों के प्रोटोकॉल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर हम चाहते हैं ना कि हम उम्मीद ना रहें, अब तो हमारा वक्त अगर आगे चला गया, हमने अपनी ज़िंदगी की कुछ बहारें देख ली, तो आज से ही अपनी गोदों के बच्चों और हर एज के बच्चों के लिए ये स्टैंडर्ड बनाइए कि मैंने उनको दुनिया में भी किसी तालीम से पीछे नहीं रखना। लोग सवाल पूछते हैं फ़लां स्कूल में दाखिल कराएं कि ना कराएं, पब्लिक स्कूलों में कराएं या मुस्लिम में कराएं, दिस एंड दैट, इससे कोई सरोकार नहीं। आप एक मेयार बना लें कि कहाँ तालीम हासिल करने के बाद आपका बच्चा ज़हनी तौर पर اخلاقی طور پر اپنے مینرز کے اعتبار سے دین کے لیے بھی ایک اچھا نمونہ بنتا ہے. بس یہ ایک چھوٹا سا معیار رکھ لیں آپ. بعض لوگ جب پبلک سکولوں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے, یہ امریکہ کی بات جو میرے تک پہنچتی ہیں باتیں, پبلک سکولوں میں بالکل فیس نہیں ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے ہی لے لیتے ہیں. ایون جن کے بچے نہیں ہیں وہ بھی پے کرتے ہیں ٹیکسیز کی صورت میں, اور جن کے بچے ہیں پھر وہ فری پڑھتے ہیں, ان کے خیال میں فری ہوتا ہے لیکن وہ فری ہوتا نہیں ویسے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب چونکہ اکثریت وہاں ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ نے مالی آسودگی دی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے بچوں کو ادھر نہیں بھیجنا, یا ہر طرح کے کلچر کے لوگ ہیں. اور ہم پھر اس کے بعد یعنی ویسٹرن سکولوں میں ہی پرائیویٹ سکول ہوتے ہیں, ایک تو جس طرح ہمارے مسلم سکولز ہوتے ہیں نا جو دونوں تعلیم دیتے ہیں, اسی طرح کرسچینس کے بھی پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک ایک سکول کی فیس $700 تک میں نے بھی سنی ہے. میری اپنی یعنی اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس آتی تھیں ان میں سے ڈاکٹرز کی بیویاں تھیں سب تھیں, اور 700-800 ایک بچے کی منتھ کی فیس دیتی ہیں وہ, اور صرف اس وجہ سے کہ یہ تھوڑے بچے ہوں گے, اسٹینڈرڈ ہائی آف کورس, پبلک اور پرائیویٹ کا فرق ہے, لیکن ایک اتنا بڑا ڈرا بیک ہے ان سکولوں کا. اور وہ کیا کہ جس طرح ہمارا اگر پرائیویٹ سکول ہو تو اس میں بیس اسلام رکھ کے پھر ساتھ رکھتے ہیں نا دوسری تعلیم, اس طرح ان کے پرائیویٹ سکولوں میں کرسچینٹی کی ایجوکیشن مسٹ ہوتی ہے. ان کو چرچ میں بھی جانا ہے ایک ہفتے میں, ان کو ان کے سانگس بھی گانے ہیں, اور دس اینڈ دیٹ. اور اب یہ مرحلہ آپ سوچئے ذرا کہ کوئی حرج نہیں تھا اگر بچوں نے اپنے دین کی تعلیم لی ہوتی. آپ نے اسلام کی تو ان کو اس طرح دی نہیں, اور ہفتے میں 5 دن 6 سے 7 گھنٹے بچے جس ماحول میں ہوں, جن ٹیچرز کے زیر اثر ہو, باقاعدہ وہاں مطلب چرچز سے ٹیچ کرنا ہے. بالکل ایسے ہی سوچیں کہ جیسے ہمارے اسلامک سکولوں میں اسلامک پھر ٹچ زیادہ ہوتا ہے ایسے سکولوں میں, اس طرح ان کے کرسچینٹی کا تر مسٹ ہے, آپ چھوڑ نہیں سکتے. اب آپ سوچیے کتنی بڑی قیمت دی, اور ایسے سکولوں کے پڑھے ہوئے بچے واقعی ان کا اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہوتا ہے, ان کی ڈگری جو ملتی ہے اس کی وجہ سے بچوں کو اچھی یونیورسٹیز میں ملتا ہے. وہاں بہت بڑے معروف نام ہیں یونیورسٹی کے, جیسے ہیوسٹن میں 2 یونیورسٹیاں ہیں, اور ایک تو UH کے نام سے, یونیورسٹی آف ہیوسٹن کے نام سے اس کو معروف کیا ہوا ہے, اس میں ہر ایک ہی پہنچتا ہے اور جاتے ہیں. لیکن ایک دوسری یونیورسٹی ہے, وہ یونیورسٹی ایسی ہے کہ جہاں پھر انہی پرائیویٹ سکولوں کے موسٹلی بچوں کو داخلہ ملتا ہے, اور وہ جو دوسری یونیورسٹی ہے وہ جوس کی ہے. آپ سوچیں کہ جو بچے اعلیٰ سکولوں سے شروع سے اپنے ذہن کرسچینٹی کے انڈر بنا کے نکلے ہوتے ہیں نا, پھر وہی لوگ اعلیٰ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. اب ہوتا کہ یہی پھر مسلم جب اعلیٰ عہدوں پہ پہنچتے ہیں, اچھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, سرجن بن جاتے ہیں, سائنس میں جاتے ہیں, تو ان کا ذہن اتنا زیادہ یعنی کرسچینٹی کے کلوز اور اسلام سے دور ہوا ہوتا ہے کہ پھر یہ انٹلیکچوئل بحثیں کرتے ہیں. پھر عموماً ایسے لوگوں کو بعد میں جابس بھی اچھی ملتی ہیں, مال بھی ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے, پروٹوکول بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اس وقت اسلامی نظریات جو فیوٹ ہو رہے ہیں نا جس طبقے میں, وہ طبقہ ہے کہ جن کو شروع سے اسلام نہیں ملتا لیکن دوسرے ازم سے وہ متاثر ہوتے ہیں, اور اس یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے لوگوں کو تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو اس یونیورسٹی میں ملا. تو اس وقت نہ تو کسی کو برا کہنا ہے نہ اچھا کہنا ہے, ہمیں اپنی یہ فکر کرنی ہے. کہیں بھی رہیں, آپ امریکہ میں رہیں, آپ ناروے میں رہیں, آپ پاکستان میں رہیں, کہیں بھی رہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بچے جب تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ A+ A جان یاد کر لیں اور 1+1 کر لیں, لیکن دین کی ان کو بیسکس بھی صحیح نہ بتاؤں. ٹیوشن شروع ہو جاتا ہے پھر اسلامک جو بیسک چیزیں ہیں اس کے اندر بعض دفعہ پرابلم ہو جاتا ہے. اور اب جیسا کہ پیچھے تذکرہ کیا کہ یہاں سے عام یہود کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے, اس رکوع میں ہم 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں, ایک علم والے یہود, علماء یہود, جن کا تذکرہ پیچھے ہم نے دیکھا. ابھی جب رکوع پورا ہوگا تو ہم اوور آل دونوں کے اوپر اکٹھی بات پھر کریں گے. علماء یہود کے 2 پرابلمس تھے, انہوں نے 2 قسم کی غلطیاں کی تھیں. ایک, انہوں نے تحریف کر لی تھی دین کے اندر, کتاب جو تھی تورات اس کو انہوں نے بدل دیا, چینجز کر لی تھیں. اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اس کتاب کو سمجھنے کے بعد بھی اس کی تحریف کر لیتے تھے. اور دوسری چیز تھی ہیلا سازی, بہانے کر کے دین کو اس طرح کا پیش کرتے تھے کہ ان کے اپنے نظریات کو سپورٹ کریں. یہاں اب انہی کی ایک, علماء یہود کی ایک عادت یعنی تحریف کرنا, دین کو بدل دینا, اس کا आम लोगों पर इफेक्ट क्या होता है उसका तذکرہ हम पढ़ेंगे। मैं बात को आसान करने के लिए दोबारा दोहरा देती हूँ कि जब दीनी तबके में बिगाड़ आता है ना, इल्म वालों का बिगाड़ बिल आखिर दुनिया वालों के बिगाड़ की सूरत में दिखता है। किसी भी सोसाइटी में इल्म से मुंसलिक लोग बहुत थोड़े होते हैं, ठीक है? तो किसी इलाके में दीन वाले थोड़े होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा बिगाड़ भी सोसाइटी में बहुत बड़ा बन के फैलता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि पीछे से पानी आ रहा है, एक पाइप के अंदर है, यानी मोटा पाइप कह लें बड़ा कह लें, वो पाइप पूरा जो पीछे से फ्लो था, दरिया से आ रहा था या किसी भी डैम से आ रहा था, वो एक बड़ी सी पाइप के अंदर मौजूद है, वो फिर भी एक लिमिटेड एरिया में। लेकिन जब वही पाइप आगे जाके कितने रास्तों में बढ़ता है, डैम्स, दरवाजे, जहाँ से पूरे शहर को पानी जाना है, तो आप देखिए कि वो एक डैम, एक पाइप का पानी पूरे शहर की गलियों में फैल जाता है। इसी को समझें कि पीछे इल्म का सोर्स है उलमा के सूरत में, दीनदारों के पास है। उनके अंदर एक कतरा भी जहर का आ गया ना, तो जब वो पानी आगे जाएगा ना, उसके कितने छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे, लेकिन डर होगा कि पूरे शहर के अंदर कहीं ना कहीं उसके जर्म्स पहुंच जाएंगे। यहूद के उलमा का जो बहुत बड़ा जुर्म किया था कि उन्होंने किताब को बदल दिया। ये इतना बड़ा जुर्म होता है कल भी और आज भी। किताब को बदलने की सूरत में होता क्या है कि जो असल इंटेंसिटी थी ना, इंटेंसिटी समझते हैं, यानी उसकी शिद्दत, वो कम या ज़्यादा हो गई। मसलन आप देखिए कि हम अमेरिका में जो वोल्टेज यूज़ करते हैं ना, जब हम वहाँ की कोई चीज़ लाके आपके इधर नॉर्वे में चलाते हैं ना, अगर हम पहले से उसकी केयर ना करें तो वो एकदम बस्ट हो जाती है, जल जाती है। वोल्टेज का फ़र्क है, यहाँ की वोल्टेज तेज़ है, वहाँ की कम है। हमारी मशीनें चूँकि कम होती हैं, आदी होती हैं, उन्होंने इसी तरह से बनाई है, वो फट जाती है। फ़र्क क्या है? हालांकि दोनों बिजली है, ये भी बिजली वो भी बिजली, इंटेंसिटी का फ़र्क इतना अहम है। इसको और एक मिसाल से समझ लीजिए कि आपको डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को ये दवा आपने देनी है और उसके एक डोज बता दी कि ये एक ढक्कन डालें और इसमें 2 चम्मच पानी के डालें ताकि ये डाइल्यूट हो जाए, पतली हो जाए, इसका असर कम हो, ताकि आपका बच्चा इसको सफ़र कर सके, इसको बर्दाश्त कर सके। माँ को बड़ी मोहब्बत है, वो कहती है मेरे से बच्चे की दर्द देखी नहीं जाती, मैं पानी नहीं डालती उसमें, मैं उसको डायरेक्ट वो कंसंट्रेटेड किस्म की जो थिक गहरी सी है वही पिला देती हूँ दवा। नतीजा क्या होगा? बच्चे को फ़ायदा नहीं होगा ना, नुकसान होगा। एक एस्प्रिन बड़ों की होती है, एक बच्चों की भी होती है। टाइलनॉल सिरप बच्चों का भी होता है, बड़ों का भी होता है। इंटेंसिटी का फ़र्क इतनी अजीब बात है। मैंने इस पर इतनी बात क्यों की? इसलिए कि इस वक्त ना सिर्फ ये कि उलमा यहूद या बनी इसराइल का ये मसला था, हम में से तो इनसे अब किसी का ताल्लुक नहीं, इस वक्त जो मेरी छोटी सी समझ में बात समझ आई है, जितना मैंने गौर किया है, जहाँ जहाँ जाके देखा है कि आखिर क्या वजह है। हमारी तो किताब भी महफूज है, हमारी किताब में तो ज़बर ज़ेर का फ़र्क भी नहीं हो सकता। यहूद में तो एक ऐसा भी दौर आया था कि असल किताब गुम भी गई और असल बदल गई, इसके बावजूद कि हमारी किताब मौजूद है, फिर भी इतनी बेदीनी क्यों है आज? लोग इतने दीन से गाफिल क्यों हैं? क्या उनको खुदा खौफी नहीं? बिल्कुल है, आप पूछ के देखें, वो खुदा खौफी में जीने वाले लोग हैं, वो कहेंगे हमें अल्लाह से बड़ा डर लगता है। तो क्या फिर अमल से वो दिखते? क्या उनको जन्नत का नहीं पता, जहन्नुम का नहीं पता? पता है, लेकिन बेअमली की वजह क्या हुई कि इस वक्त हमारे अंदर भी यही मसला शुरू हो गया कि दीनदार तबके ने लोगों को दीन की असल डोज या तो बहुत कम करके दे दी, इतनी डाइल्यूट कर दी कि क्या कहा, जो मर्जी करो, बस फलां का पल्लू पकड़ लो, वो तुम्हें पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। गोया कि एक ऐसा तसव्वुर आता है, यानी किसी की बात सुनने के बाद जो मुझे तसव्वुर आया कि मेरे पीर साहब जन्नत की दीवार के अंदर खड़े होंगे, वहाँ से वो कपड़ा लटकाएंगे बाहर, और मैं बाहर खड़ा हुआ उस कपड़े का पल्लू पकड़ूंगा, फिर वो मुझे अंदर से खींच लेंगे। ये वर्जन, ये कौन सा वर्जन है? ये ऐसा है कि आपने 250 मिलीग्राम की टेबलेट देनी थी अपने मरीज़ को और आपने उसको 50 की भी नहीं दी। आप कहते हैं तुम्हें किसने कहा दवाई खाने की ज़रूरत है, बस तुम डॉक्टर साहब के स्टोर के आगे बैठ जाया करो और उनको बस फीस देते जाओ, फिर देखो आगे का काम हमारा है। इतना डाइल्यूटेड रिलीजन, जहाँ लोगों को कोई मसला लगा लोगों ने उसका हल पेश कर दिया। एक शख्स थे, गुस्से में उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी। अब ये मेरे पास कितनी कहानियाँ जमा हुई हुई हैं जो इन आयतों के नाते से हमारी जाहिल अवाम में फैली हुई है। किसी एक ने सुनाया कि शौहर ने बीवी को तलाक दी और कहा गुस्से में, और तलाक कोई प्यार में तो देता भी नहीं है, हमेशा ही गुस्से में दी जाती है। अब बाद में पछतावा हुआ और उनके ख्याल में वो एक ही दफ़ा में कह कह के तो पूरी तीनों ख़त्म हो गई। अब क्या करें, अब तो घर टूट गया। मौलवी साहब के पास आए, क्या करें मौलवी साहब, आपका हाथ गर्म करते हैं, कुछ रास्ता निकालें। और मौलवी साहब ने जो रास्ता निकाला उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है, चलो तुम ऐसे कहो कि मैंने अपनी बीवी को तोए वाली तलाक नहीं दी, तोए से जो तलाक होती है ना, तोए से सोचिएगा, वो तलाक नहीं दी, तुम्हें कोई कहेगा तो कहना मैंने उसको ते से तलाक दी है। और आप पढ़ चुके हैं ते वाली तलाक, तिलकाई, लिका मुलाकात को कहते हैं, यानी तलाक तोड़ना, और ते वाली तलाकात, तलाक का मतलब है मिलना। उन्होंने कहा तुम ये कह दो जो तुम्हारा घर बच जाएगा। हालांकि इस्लाम ने तो इससे पहले इससे भी बहुत आसान रास्ता दिया हुआ था, इस सारे चक्कर में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इन कहानियों का तस्करा है बिसात में कि व मिन हुमियोन, और इनमें से बाज़ उम्मी है, अनपढ़ है। कैसे, ला यालमून अल किताब, किताब को नहीं जानते। देखिए आ गई ना तारीफ, किताब को ना जानने वाले उम्मी होते हैं। आप कहेंगे कोई भी किताब हो सकती है, नहीं, अल किताब, ये जो लफ्ज़ अल लगा हुआ है ना, ये बता रहा है कि ये मजहबी किताब है, ये ग्रामर की रोशनी से मार्फा है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन सिर्फ मजहबी किताबों के लिए आता है। कहा कि उनको किताब की असल बातों की तो खबर ही नहीं है। हाँ फिर किताब की जगह क्या रह गया, इल्ला अमानिश, मगर झूठी आरजुएं, उमनिया की जमा, झूठी और बातिल आरजुओं को कहते हैं, यानी खुद सेल्फ मेड एडिशन ऑफ रिलीजन, खुद साख्ता नुस्खे। और करते क्या हैं, व इन हुम, और नहीं वो, इल्ला मगर, यज़ुन्नून, वो तो गुमान ही करते रहते हैं। यानी ये वो लोग हैं जिनके पास सॉलिड नॉलेज नहीं है, किताब जिसने पढ़ी नहीं उसके पास नॉलेज हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए चाहे अलामा दहर कह लें उसको, चाहे आप उसको शेख साहब कह लें, चाहे आप उनका नाम मुफ्ती साहब रख लें, जिसने कुरान को नहीं पढ़ा, किताब को नहीं पढ़ा, वो बस इल्म से खाली है। और जहाँ इल्म नहीं रहता वहाँ क्या आता है, जन, गुमान, सिर्फ अटकलें, शायद ऐसा हो शायद यो, यानी दलील के बग़ैर हर काम करने वाले। ऐसे तमाम लोग जो हैं इनका हाल क्या है, आयत को एंड तक देखते हैं फिर इसमें से कुछ अपने लिए फ़वाद देखेंगे। फ़वैलुन, पस वैल है। वैल का लफ्ज़ कई मानों में आता है, लेकिन एक माना यहाँ याद रख लीजिए कि जहन्नुम की वो वादी, वैली ऑफ दी हेल, कि जिससे जहन्नुम खुद भी पनाह मांगती है, इतनी डेंजरस है वो, उसको वैल कहते हैं। यानी अल्लाह इनको इतनी पस्ती में गिराएगा कि जहाँ से जहन्नुम भी पनाह मांगती है, इनके लिए ये खराबी है। किन के लिए, लिल्लज़ीन यक्तुबून अल किताब, वो लोग जो लिखते हैं किताब को, बीअईदीहिम, अपने हाथों से। यहाँ लिखने से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आप में से किसी को कहा जाए कि अरबी टेक्स्ट अपने हाथों से लिखे, इसका तर्जमा याद करके लिखे, नहीं, यहाँ किताब को लिखने से मुराद क्या है कि किताब के अहकामात को खुद घड़ते हैं। और ये उस दौर की मसले थे और आज भी दिखते हैं हमें, दीन वालों ने किताब में अपनी मर्ज़ी से इजाफे कर दिए। और कहते कि चले कर दिया था तो मान लेते, हाँ जी हमने कर लिया, हमें अल्लाह का दीन एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें नहीं पसंद, बड़ा मुश्किल है, हम नहीं मानते, बहुत ठीक था, इतना बड़ा जुर्म ना होता, इसका तो एक ही इलाज है ना, कुफर, बस पकड़ के इनको अलग कर दो कि ये दीन के दायरे से निकल गए। लेकिन इससे भी बड़ा जुर्म क्या है कि मसले अहकामात अपने हाथों से घड़ते हैं, लिखते हैं, सुम्म यकूलून, फिर कहते हैं, हाजा, ये क्या हाजा, आप लोग सोचें, ये बदला हुआ हुक्म, ये तहरीफ, उनके हाथों की किताबत, मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। यानी ये तो बस अल्लाह की तरफ से है, हमने नहीं कहा, मतलब खुद साख्ता बातों को दीन की बातें बनाकर पेश करते हैं। बार बार लोगों को कह देंगे कि हाँ हाँ ये किताब में लिखा हुआ है, ये वहाँ लिखा हुआ है, ये उधर लिखा हुआ है, इस तरह की बातें कर देते थे। और करते क्यों थे ऐसा, अब आगे इसकी वजह है। जहाँ जहाँ कहो ना वहाँ छोटा सा लफ्ज़ लिख लिया करे तो बाद में फिर इंशाल्लाह याद रहेगा। क्यों करते थे भाई, किसी को क्या मुश्किल है, इतना बड़ा जुर्म अपने नाम लगा ले, अल्लाह की लिखी, अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब को अपनी के। यहाँ मैं रुक के ज़रा सा आपका शऊर बेदार करना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई किताब होती है ना, या कोई एक पेज भी होता है, तो उसके नीचे लिखा होता है कॉपीराइट्स। अगर कोई उनकी किताब में कुछ कमी बेशी करके अपने नाम से छाप छुप ले तो कैद हो सकती है, सज़ा हो सकती है। दुनिया की इंसानों की लिखी हुई किताबों और उनकी मूवीज़ और उनके उनकी स्पीचेस के कॉपीराइट्स हों, तो अल्लाह का कलाम जो आसमान से आया है, क्या उसके कॉपीराइट्स नहीं होने चाहिए? असल में इस किताब के जुमला हकूक महफूज हैं। कभी आपने एक जुमला सुना होगा, इस किताब के जुमला हकूक महफूज हैं, तो आप पूरे शऊर से कह दीजिए कि कुरान पाक के जुमला हकूक महफूज हैं। किस सूरत में? इसके लफ्ज़ों में कोई कमी बेशी नहीं, इसके मानों में कोई कमी बेशी नहीं, इसकी ज़बर ज़ेर में कोई चेंज नहीं कर सकता। इसी वजह से फिर बास मुफस्सरीन कहते हैं, यानी आज के दौर के उलमा और मुफ्ती कहते हैं कि ये जो उलमा कराम के कैसेट्स होते हैं या सीडीज़ है, जो उन्होंने कुरान की तिलावत की है, वो उस पर कॉपीराइट्स नहीं रख सकते। आप अपनी स्पीच का रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कहते हैं इसको कोई रिप्रोड्यूस ना करे। अमूमन आप इंग्लिश की सीडीज़ के सेट्स देखते हैं, अनवर औलखी के और मुख्तलिफ जो भी स्पीकर्स हैं, नीचे बड़ा मोटा लिखा होता है कि जुमला मतलब कॉपीराइट्स हैं, अगर किसी ने इसकी इलीगल कॉपीज़ बनाई तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, वो बना ले, उनकी मेहनत है, ऑफकोर्स उनका हक है, अगर इस तरह ना करें फिर तो असली से ज़्यादा नकली नुस्खे आने लग जाएंगे, लेकिन सादे कुरान पाक के कोई कॉपीराइट्स नहीं होते। बहरहाल ये एक साइड का इशू था। अब हुआ क्या, कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों करते हैं, इसकी रीज़न तो बताया ली। ये जो लाम है ना, ये इल्लत का होता है, इल्लत कहते हैं रीज़न को, वजह, वाई, भाई क्यों कोई करेगा इतना बड़ा जुर्म, ताकि लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि इसके ज़रिए ही क्या है इधर, अब आप सोचिए ज़रा, टेक्स्ट को देखिए और बताइए कि बिही से यहाँ क्या मुराद है। तहरीफ शुदा हुक्म, उनके खुद साख्ता बनाए हुए हुक्म, कहते हैं ये लियश्तरू बिही, अब ये हुक्म भी हो सकता है और इनका ये अमल, यानी इस तहरीफ के ज़रिए से क्या करें, समनन कलीलन, थोड़ा सा मोल ख़रीदें, कीमत ख़रीदें, इससे इसकी कीमत लगाएं। ये समनन कलीला क्या है, दुनिया का फ़ायदा, समन कहते हैं कीमत को, कलील कहते हैं थोड़े को, यानी दुनिया का थोड़ा सा जो फ़ायदा मिला है, तो क्या ज़्यादा ले सकते हैं? नहीं, दुनिया का तो ज़्यादा भी थोड़ा है, क्यों कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया तो एक धोखे का सामान है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ समनन कलील की, कि ख्वाब में आपको रात को $10,000 मिले, ख्वाब में, हाँ, या आपको $100 मिले, दोनों में कोई फ़र्क है जी, कोई कहेगा? सुबह उठ के अफसोस किसको ज़्यादा होगा, वो ख्वाब था, उसका अफसोस किसको ज़्यादा होगा, जिसको $100 मिले ख्वाब में या जिसको 10,000 मिले, उसको ज़्यादा अफसोस होगा जिसको 10,000 मिले, क्योंकि वो ख्वाब था। कभी ऐसा होता है कि आप सुबह उठे तो आप कहते हैं हाय ये ख्वाब था, फिर आप दोबारा सोना चाहते हैं कि वो कंटिन्यू हो जाए। इसी तरह जब लोग कब्रों से उठेंगे ना, तो जिनकी दुनिया बड़ी रंगीन होगी ना, यहाँ लखपति और करोड़पति होंगे, उनका दिल चाहेगा फिर सो जाए, क्योंकि हाय इतना हसीन ख्वाब ख़त्म हो गया। और जिनके पास कुछ भी नहीं था, ख्वाब आप बुरा देख रहे हो ना, बड़ा गुजारे का आप, मुश्किल में है, हैंड टू माउथ है, मुश्किल है, पीछे लगी हुई है कुछ ऐसे, अरे एकदम आँख खोले तो आप कहते हो अल्लाह तेरा शुक्र है ये ख्वाब था। ये कैफियत उनकी होगी जिन्होंने तकवा के साथ ज़िंदगी गुजारी होगी, बचते बचाते अल्लाह गुजर गया वो ख्वाब, अब वो वक्त नहीं रहा, अच्छा अब आगे हकीकत शुरू हो रही है। तो लिहाजा लफ्ज़ समनन कलीला से कोई ये ना सोचे कि बस ये ऐसे ही है कि थोड़ी तो ना लो ज़्यादा ले लो, और हो सकता है कोई इसकी तारीफ भी कर दे कि भाई हम थोड़ा नजराना नहीं वसूल कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने मना किया समन कलील से, हमें बड़ी बड़ी रकमें दे दो। और क्या ये सिर्फ माल होता है? नहीं, ये इज्जत भी होती है, ये रैंक, स्टेटस, नजराने, उनको चुन लिया जाता है गवर्नमेंट के नुमाइंदे बनाकर। ऐसे दीनदार जिनको हुकूमत अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर लेना, उनकी स्पीचेस से पहले उनके काम, मैं नहीं कह रही कोई ऐसा होता है ना, मुझे कोई इसका इल्म है, लेकिन मिसाल दे रही हूँ कि बाज़ दफ़ा दीन के नाम पे ऐसे लोगों को प्रोटोकॉल मिलने लगता है, क्योंकि ये बड़ा नरम मसला बताते हैं, ये तरीका निकाल लेते हैं, और ऐसे लोगों को लोग ज़्यादा आगे करते हैं उन लोगों की निस्बत जो हक बात करते हैं। ये सब कुछ समनन कलीला है जो इस तहरीफ के नतीजे में मिला। होगा क्या? दोबारा वही बात, फवैलुल, पस वैल है, खराबी है, लहुम उनके लिए, किस बात में? मिम्मा कतबत ऐदीहिम, उसमें से जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा। अल्लाह अकबर, दोबारा लवैल आ गया, और वैल खराबी को भी कहते हैं, तबाही, बर्बादी है इनके लिए जो इन्होंने अपने हाथों से लिखा, यानी वो तहरीफ शुदा चीज़ वो भी हलाकत में गई इन वेन, और खुद भी। वैलुल्लहुम मिम्मा यक्सिबून, और उससे जो कमाई उन्होंने खरीदी या उससे कमाया वो भी हलाकत में चला गया। यहाँ तक आप देखिए कि अगर पूरी बात को देखें तो उलमाए यहूद की जसारतें पेश की गई हैं, उनकी जुर्रत पेश की गई है, इसमें मुफस्सिरों की तावीलात भी आ जाती हैं, इसमें कानूनी इज्तिहादात भी आ जाते हैं, इसमें मुफक्किरों के फ़लसफियाना ख्यालात भी आ जाते हैं, उनके फुकहा की मुँशगाफियाँ, कौमी तारीखी वाक़यात को किताब की असल बना दिया, और ऐसे लगता है कि किताब सिर्फ़ किस्से कहानियों का नाम रह गई, तसल्लियों और ढकोसलों का नाम रह गई। यानी बाइबल में अल्लाह की बात के साथ साथ अपने अफकार शामिल कर दिए। अदी बिन हातिम एक क्रिश्चियन शख्स थे, मुसलमान हो गए अल्लाह की रहमत से, उसके बाद नबी सल्लम के पास आए, या जिन दिनों में ये परख रहे थे कि इस्लाम सच्चा दीन है कि नहीं, कहने लगे कि सूरत तौबा की एक आयत मुझे शुबे में डाल रही है, क्योंकि उसका खुलासा क्या है, क्रिश्चियंस के बारे में बात है या यहूद के नसारा के, कि इन्होंने अपने उलमा को रब बना लिया है। खुलासा उसका ये, सूरत तौबा में आप ढूंढ सकते हैं आयत को, यानी इन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को रब बना लिया। तो कहने लगे अल्लाह के नबी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा ये तो लग रहा है कि नऊज़ु बिल्लाह कुरान पाक ने इल्ज़ाम लगाया है यहूद और नसारा पे, हकीकत में तो ऐसा नहीं है। उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपने उलमा के हलाल करदा को हलाल नहीं समझने लग जाते? यानी बग़ैर दलील के, जिसको तुम्हारे आलिम के कि ये हलाल है तो कर लेते हो, और क्या उनके हराम करदा को हराम नहीं समझने लगते? कहा ये तो हम करते हैं। कहा यही है उनको रब बनाना, यानी बग़ैर दलील के, बग़ैर सनद के, किसी की कोई बात ले लेना ये सोच के कि ये मुफ्ती साहब हैं, आखिर इनको आता ही है ना, ये आलिम हैं, ये दाढ़ी वाले हैं, ये फलां हैं, तो क्या ऐसे लोगों की बात को मानना, यही है इनको रब बनाना। आज अगर हम देखें तो हमारे दीन का सोर्स क्या है, आज हमारी अक्सरियत किस चीज़ को तरजीह देती है, कितने लोग हैं जो अपने मसाइल में अहादीस को पेश करते हैं, और कितनी वाज़े आयतों और हदीसों को छोड़कर लेते के उलमा की बातें, कहावतें, फ़ज़ाइल, आमाल, ये कर लो तो इतना सवाब, इन्हीं चीज़ों ने दीन को प्ल्यूट कर दिया। देखिए वैल का लफ्ज़ 3 दफ़ा इस आयत में आया है, और ये इतनी ज़बरदस्त वादी है। बाज़ कहते हैं कि पीप, और जैसे जहन्नमियों की जो पीप जहाँ गिरती है ना, उनके ज़ख्मों का धोवन, ये वो जगह है। 40 साल दरकार होंगे काफिर को इसके अंदर गिरने के लिए, इतनी डीप डाउन है। अल्लाह ने क्यों इतना गंदा कहा? क्योंकि इन्होंने दीन को प्ल्यूट कर दिया। लियश्तरू बिही समनन कलीला, इनके उलमा रिश्वत लेकर उमरा के लिए तरीके निकाल लेते थे, उनको तसलियां दे देते थे कि तुम जो भी करते हो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, करते रहो। अब आप देखिए कि यहाँ लफ्ज़ अमानी पे अगर हम बात करें, ये दोनों आयतों में यानी खुलासा एक ही है कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को तबाही में कहा कि जो अल्लाह की किताब के साथ खराबी कर दे। अमानी का लफ्ज़ जो है ना, ये आरज़ू या ख्याल बांधने के लिए आता है। इसके बारे में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये क्या थी? अकाज़ीकु مختلق سمعوها من علمائهم فنقلها على التقليد. کہتے ہیں یہ ان کے علماء کی گھڑی ہوئی وہ کہانیاں تھیں جس کو تقلید کی بنیاد پر انہوں نے نقل کر دیا، یعنی سنی در سنی روایتیں، کہانیاں، وشفل تھنکنگ کہہ سکتے ہیں آپ ان ساری باتوں کو، کہ جو خواہش تھی وہ کر دی، ٹونے ٹوٹ کے گھڑی ہوئی باتیں. سستی نجات کے نادر نسخے، مفت جنت حاصل کرنے کے طریقے، اپنے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ وہ شارٹ کٹس دین کے نام پہ، یہ پڑھ لو تو اتنا ثواب، اس کو پڑھ لو تو اتنے 100 قرآنوں کا ثواب. پچھلے ویک مجھے پتہ نہیں کہیں سے ایک میرے سامنے بک تھی، بھول گیا کہاں دیکھی میں نے، اس میں لکھا ہوا تھا، کسی کے صدقہ جاریہ کے لیے چھپی ہوئی تھی، شاید آپ چیک کریں، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں ہوگی، یہیں کو چھوڑ کے گیا تھا. یعنی چھوٹی سی کتاب تھی، اور خلاصہ کیا تھا کہ کیا 5 منٹ میں پتہ نہیں کتنے 1000 قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں لینا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ تو سن کے تو چونک گیا بندہ، بھائی کون ہے جو نہ چاہے. پھر اس کے بعد قرآن کی صورتیں لکھی ہوئی ہیں، اس صورت کو پڑھیں تو اس کی ایک دفعہ پڑھنے کا اتنے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، اس کو پڑھیں اتنا، اس کو پڑھیں اتنا. کوئی دلیل نہیں، کوئی حدیث کا حوالہ نہیں، کچھ نہیں. چلے آپ کہتے ہیں کیوں منع کرتے ہیں، شاید ہوگا ثواب شاید نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی پڑھنے دو، بعض لوگ یہ سوچ کے بھی پڑھ لیتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ اگر ثواب ہونا ہوگا تو ہمیں ہو جائے، نہیں ہوتا تو نہ ہو. اگر بات اتنی بھی ہوتی نا تو کافی تھی، لیکن اس کا ایفیکٹ، اس کا اثر کیا پڑا؟ آپ سوچیں، انسان بڑا سمجھدار ہے، اللہ نے اس کے اپنے اندر نفع نقصان بہت رکھا ہوا ہے. ایک بندے کو پتہ چلتا ہے کہ 10 منٹ میں میں اتنا ثواب لے لیتا ہوں کہ جنت کے بیچ میں موتی اور ہیروں اور پتہ نہیں کس کس کا میرا محل بن جاتا ہے، اور اس کو پڑھ لیں تو اتنی حوریں میری غلام ہیں. آپ سچ بتائیے، کون ہے جو روز 4 گھنٹے قرآن پڑھے گا؟ تجوید کون سیکھے؟ بھائی ہمارا محل تیار ہے. دیکھیے یہ بات مذاق میں نہ لیجئے گا، یہ وہ ایک باریک سی فائن لائن ہے کہ جس نے اس وقت ہماری امت کو بے دین کر دیا. علم کی محفلوں میں لوگ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے تو اپنے محل تیار کیے ہوئے ہیں، تھوڑے دن کے بعد وہ جمع ہوتے ہیں اور وہ کچھ پڑھ پڑھا لیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی خوش کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھا لیا، آپ نے پڑھ لیا، اب کیا کریں. اور جو ہی آپ ان کو قرآن کی، دین کی، تعلیم کی دعوت دیں، وہ کہیں گے یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، یہ قرآن میں الجھا دیتے ہیں، آپ کون اتنا پڑھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ نکلا کہ ان ہم اللہ یا ظنون، یہ اس کا ایفیکٹ ہے کہ جب سستی چیز ایک مل جائے تو مہنگی کون خریدے گا. آپ کسی شہر میں ایک دکان پہ سیم برانڈ کی چیز آپ کو یا نقلی چیز بیش کر دی جائے، اور ہمارے ملکوں میں تو یہ بہت عام ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا نقالوں سے ہوشیار، مہر دیکھ کے کرے، ملتی جلتی مہروں سے دھوکہ نہ کھائیں، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ معروف جملے ہیں جو ہم دنیا میں سنتے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین میں بھی ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. ہر گنبد مسجد کا نہیں ہوتا، ہر داڑھی دین کا ریچول نہیں ہوتی. بڑے بڑے اعمال کی دعوت دینے والے ضروری نہیں کہ وہ دلیل کی بات پہ بات کریں، کسی پہ کوئی شک نہ کریں. اللہ نے آپ کو بہترین کرائیٹیرین دے دیا ہے، صبر کر کے، شکر کر کے اس قرآن پاک کے سفر کو طے کرتے جائیں، چاروں طرف سے کان لپیٹ کے، کسی سے کچھ نہ الجھیں، نہ زیادہ ان کو اپنی طرف کہیں کہ کہیں وہ آپ کو ہی نہ ہٹا لے. بس اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ اس قرآن کے سفر کو میرے لیے آسان کر دیں. جب آپ اس کو پڑھ لیں گے نا، آپ کی ایک اپنی سوچ بن جائے گی. اس پہ کسی استاد کا کوئی افکار نہیں. آپ کوئی لوگ کہیں گے دیکھا قرآن پڑھے تو انہوں نے ان کو اپنے نظریات کا کر لیا، تو ہمارا تو کوئی نظریہ آپ نے آج تک سنا؟ روز جو بھی بات ہوتی ہے یا قرآن کی آیت ہے اور اس کی ایک ایک کی دلیل ہے، آپ کو تو لفظ توڑ توڑ کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس کی عربی میں اردو یہ چھپی ہوئی ہے. ابھی تو گرامر میں آپ کو الجھایا نہیں، آپ گرامر پڑھیں گے تو ترجمے کو خود ٹیلی کریں گے، یہاں کسی نے غلطی کی آپ فوراً بولیں گے جی گرامر تو یہ کہتی ہے، آپ نے یہ کیوں کہا. الحمدللہ یہ ڈائریکٹ سورسز تک جانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پھر بعض دفعہ اپنے استادوں کی غلطیاں بھی نکال لیتے ہیں، ان کو غلط فہمی ہو جائے تو آپ ان کو بھی صحیح کریں گے. اور جو اس کتاب کو بند کر دیں، آج قرآن بند ہے، یقین کریں، میں کہتی ہوں اکثر کہ بند کتاب کی تعظیم کرنے والے آج بہت ہیں، چومنے والے، چاٹنے والے، لے لے کے بانٹنے والے، اس کے جزدان سونے چاندی کی تاروں والے کپڑوں سے سینے والے، रेशम के गोटा किनारी लगाने वाले बहुत है माशाल्लाह, ले ले के सौ सौ की तादाद में बांटने वाले भी बहुत हैं, लेकिन खुली किताब को बर्दाश्त करने वाले बहुत थोड़े हैं। क्योंकि जब किताब खुलती है ना, तो लोग अपनी ही सोसाइटी में मिसफिट होने लगते हैं, फिर वो पनपते नहीं हैं। वक्त का रवाज और है, शादियां और हो रही हैं, ख़ानदान कहीं और चल रहे हैं, फिर वो अपने आप को स्ट्रेंजर फील करते हैं। अजनबी। अल्लाह के नबी ने यही खुशखबरी दी थी कि जब दीन शुरू में आया था तो अजनबी लगा, और एक वक्त आएगा कि ये फिर अजनबी हो जाएगा। और फतूबा लिल गुरबा, ऐसे अजनबियों के लिए तूबा बशारत है, खुशखबरी है। एक और रिवायत में आता है, आपने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन पे अमल करना हाथ में जलते हुए अंगारे के रखने से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदा अमल करने लगता है, फिर तो नहीं लगता, हाँ शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है। सब किस हुलिये में बैठे हैं और मैं वहाँ अपने आप को छुपा के जाऊँ, उस वक़्त लगता है कि वाकई ये अंगारा ही है। उस वक़्त इंसान को अपना हिजाब और अपना लिबास अंगारा लगता है। एक दफ़ा जाके बैठ जाइए, ठंडक महसूस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस की बात है। बस एक दफ़ा आप दीन को अपना कॉन्फिडेंस बना लें, आप तो चमकने लगेंगे। आप तो अपने आप को खुद ही प्रोमिनेंट समझेंगे कि इतनों में ये बात मुझे आती है। तो होता क्या है कि जब लोग इस किस्म की बातों को आम कर देते हैं ना, तो नतीजा क्या निकलता है कि फिर अमल से लोग दूर हो जाते हैं। और ये आप बच्चे से भी पूछ लें, बड़ी एक पर्सनल सी मिसाल है, पर्सनल से मुराद ये कि थोड़ी सी हया के लिहाज से आती है माने, लेकिन मारूफ बात है कि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसको माँ का दूध पिलाया जाता है, और जो ही वो बच्चे को फीडर लगा दे तो माँ का दूध छोड़ देते हैं। क्यों? कि फीडर से तो दूध खुद ब खुद निकलता जाता है, निप्पल से आसानी का आदी हो गया ना, फिर उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसीलिए कहते हैं ये ना लगाएं ताकि बच्चे कुदरती ग़ज़ा लेते रहें। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब आसानी से एक चीज़ मिल गई, आप मुश्किल से क्यों लेंगे? आप कोई काम करते रहें, हाथ से कर रहे थे, आपको पता ही नहीं, आप सारी ज़िंदगी से कपड़े धो रहे थे, हाथों से धोते रहे, एक दफ़ा आपके घर मशीन आ गई, कुछ महीने आपने मशीन में कपड़े धो लिए, उसके बाद अगर वो ख़राब होगी तो आपकी जान पे बनी होगी। ये इंसान की फितरत है। मैं इस फितरत के पहलू को टच करना चाहती हूँ कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, वो मुश्किल से क्यों मिले? मैं आपको बहुत पीछे की बात, यानी जैसे बंदे के धुंधले से साए होते हैं ना, अपने बचपन के या बचपन से आगे बढ़ते हुए जो दिन है, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग आपको बता देती हूँ। जिस वक़्त तक मुझे इतना शऊर भी नहीं था कि मैंने ये बात सुनी हुई थी, और आप मेरी सुन के कहीं आप ना बन जाएं इस बात पे, यानी शुरू से ये बात हमने अपने घर वालों से, बुज़ुर्गों से सुनी कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लो। और हदीस है, सही रिवायत है कि फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद अगर आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए, तो ऐसे शख्स को जन्नत में जाने से उसकी मौत के सिवा कोई नहीं रोकेगा। मैं अपने आप को कहती हूँ, मैंने कई साल इस ख्याल में गुजारे, कौन है जो मुझे जन्नत से रोकेगा? मैंने तो मरते ही जाना है। क्यों? क्योंकि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ। पता उस दिन चला जिसे आयतुल कुर्सी की समझ आई कि ये कोई छू मंतर नहीं है। हमारा दीन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उसको लगा दो तो उसके सर पे एक बल्ब जलने लगे, उसको लगा दो तो वो सितारों की तरह टमटमाने लगे। दीन लॉजिकल दीन है, रीज़न वाला दीन है, और लोग ये रीजनिंग करना नहीं चाहते। इसीलिए बुला के देखिए, पार्टियों में बुला के देखें, आप शादियों में बुला के देखें, जगह नहीं रहेगी। आप सेल का एक साइन लगा के देखें, ग्रोसरी स्टोरों पे मैं हैरान होती हूँ, लाइन लगी होती है लोगों की। कभी जल्दी में मुझे भी दिल चाहे कि रोटी पकड़ लूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं रुकती कि इतनी लाइन में खड़ा किसने होना है, छोड़ो ये तो मगरिब की भी नमाज़ चली जाएगी। हाँ, लेकिन वहाँ लोग जा रहे हैं। और माशाल्लाह जब मैं लोगों की बास्केटें देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ ज़रूर इसके घर या तो कोई छोटी सी शादी है या कोई दावत है। इस तरह उल्टम पलटम चीज़ें जमा होती हैं, पता क्या चलता है कि वहाँ सेल का साइन लगा हुआ था, एक की जगह 10 उठा लिए। ये बच्चों की खुराक का इंतज़ाम है ना, तो रूहानी खुराक कितनी है? खुद भूखे होंगे तो दूसरों को कहाँ देंगे? तो लिहाजा इस मौजू को आप इस नज़र से समझेंगे कि जब कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है, तो फिर मुश्किल में नहीं को पड़ता।